तस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्।
भगवान यज्ञ के ऊपर बहुत जोर दे रहे हैं। भगवान चाहते हैं कि हमारे सारे कर्म यज्ञ रूप से हों। यज्ञ का क्या मतलब था? यज्ञ वही विष्णु हो। विष्णु का एक नाम यज्ञ है। तो जब यहां भगवान ने यज्ञ वर्ड यूज किया है तो शंकराचार्य जी कहते हैं कि सारे कर्म विष्णु के लिए होने चाहिए। विष्णु के लिए मतलब भगवान के लिए होने चाहिए। भगवान के लिए मतलब भगवान की खुशी के लिए होना चाहिए। तो इसके ऊपर बहुत जोर दे रहे हैं भगवान। यज्ञ के बिना जो दूसरे कर्म हैं जो हम लोग करते आ रहे हैं, बोले ये बंधनकारी हैं। अगर आप भगवान की पूजा से कर्म नहीं करते हो, अपने कर्मों को भगवान की पूजा के रूप में नहीं करते हो, तो कर्म अपनी पूजा के लिए करते हो। देखो ये क्लियर है कि नहीं? इतनी चीज, अगर आप अपने कर्मों से भगवान की पूजा नहीं कर रहे हो, किसी पूजा कर रहे हो, अपनी ईगो के अपने अहंकार की पूजा करते हो, अपने लिए करते हो, यह भगवान को पसंद नहीं है। अपने लिए जितने भी आप कर्म करोगे वो सारे के सारे बंधनकारी होंगे, सब बंधनकारी होंगे। बंधनकारी का मतलब वो आपके दूसरे जन्म के कारण बनेंगे। वो वासना जो है आपके दूसरे जन्म का वो कारण बनेगी। और अगर इससे छूटना चाहते हो तो आपको अपने कर्तव्य कर्म जो हैं वो भगवान की प्रीति के लिए करने हैं। तो यज्ञ का मतलब क्या होता है? कहते देखो, एक है यज्ञ के पीछे भाव क्या है, नोबल भाव होना चाहिए, एक नेक विचार होना चाहिए किसी कर्म के पीछे में। दूसरा बताते हैं कि उसके अंदर बराबर जो है अपने लिए चिंतन नहीं करके अपने से किसी हार के लिए चिंतन करो। अपने से हार का चिंतन क्या है? सोसाइटी है। आपका देखो मन विकसित हो रहा है, सोसाइटी है, स्टेट है, कंट्री है, यूनिवर्स है, इनके लिए कर्म करो। और उससे ऊपर कौन है? उसके ऊपर भगवान है, यूनिवर्स के ऊपर, उसके ऊपर भगवान है। बोले भगवान के लिए कर्म करो, सबसे अच्छा है, तो उसके लिए करो। तीसरा कहते हैं कि उसके अंदर आपकी लाइक्स और डिसलाइक्स ना हो। यज्ञ कर्म के अंदर में ये मेरे को अच्छा लगता है ये करेंगे, ये नहीं लगता है ये नहीं करेंगे, ये नहीं होना चाहिए। नो लाइक्स एंड डिसलाइक्स। चौथा कहते हैं कि उसके अंदर आपका जो है दूसरों की सहायता में आपका जो है चिंतन होना चाहिए बराबर। क्यों दूसरों की सहायता में, क्यों दूसरों की सहायता करें? तो हम लोगों ने देखा है, जगत ई सिद्धि युक्त सेवनम अष्टमूर्ति वृद्ध देव पूजनम। जगत क्या है? जगत सारा का सारा भगवान है। आप में से सब आदमी सब भगवान है। उन्होंने एक एक भगवान ने एक एक रूप लिया है, इसलिए दूसरों की सहायता करो। पांचवा बोले अपने कर्तव्य कर्म करो। कर्तव्य कर्म क्या है? ड्यूटी। हमारी ड्यूटी क्या है? तो आपका वर्ण और आश्रम आपकी ड्यूटी बताता है। आश्रम मतलब ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सब में अलग अलग आपकी ड्यूटीज हैं। ब्रह्मचर्य में क्या करना है, पढ़ाई लिखाई करना है। कौन सी पढ़ाई लिखाई? यहां तो भगवान कहते हैं वेद पढ़ो, तो हमने तो गीता, वेद, रामायण, भागवतम ये सब तो नहीं पढ़ा स्कूल में। फिर गृहस्थ आश्रम में क्या करो, जैसा पढ़ा है वेद में जैसे कर्मकांड करने को कहा है, यज्ञ द्वारा अपनी इच्छाओं की पूर्ति करो। यज्ञ द्वारा इच्छाओं की पूर्ति करने का मतलब देखो भगवान आ गए उसमें, आप भगवान की खुशी के लिए यज्ञ करते हो, उससे मन शुद्ध होता है। फिर आप जो है वानप्रस्थ में क्या करना है, बहुत बार बताया हमने, वानप्रस्थ में आपको मन को एकत्रित करना, उपासना करना है। संन्यास आश्रम में क्या करना है, आत्मज्ञान लेना है। ये प्रोसेस है, तो आप प्रोसेस को जल्दी जल्दी खत्म करके जल्दी खत्म कर सकते हो। पढ़ाई लिखाई की, उसके बाद में हमने अपना कर्मयोग किया, मन शुद्ध हुआ, उसके बाद में उपासना की, ब्रह्म का ज्ञान ले लिया, आत्मज्ञान ले लिया, ये भी कर सकते हैं। मगर कर्तव्य कर्म आपको करने होंगे। कैसे कैसे करने होंगे? मुक्त संघ समय भगवान के लिए आपको बराबर याद रखना होगा, कर्म कर्तव्य कर्म हमको करने हैं। हमारे वर्ण, वर्ण मतलब ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र के हिसाब से हमारे एक कर्म बनते हैं, और हमारा आश्रम के हिसाब से एक कर्म बनते हैं। तो अपने कर्तव्य कर्म हमको करने हैं, कर रहे हैं हम अभी, मगर कैसे कर रहे हैं? अपने लिए। किसके लिए करना है? बस इतना ही है, और ज्यादा काम नहीं है। अगर अपने लिए करते हो तो जन्म मरण के चक्कर में जाओगे, अगर भगवान के लिए करते हो तो मन शुद्ध हो जाएगा, ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, ज्ञान प्राप्त के बाद में फिर और जन्म नहीं होगा। तो कर्तव्य कर्म करने हैं, तो कर्म के प्रति क्या हो, हमारी आदर बुद्धि होनी चाहिए, कर्म बोझ नहीं लगना चाहिए। कैसे जिंदगी चल रही है, तो कट रही है किसी तरह से, ऐसा नहीं, ऐसे नहीं। और काम्य कर्म नहीं होना चाहिए। काम्य कर्म मतलब कर्म के द्वारा अपनी पूजा, उसको हम लोग कहते हैं सेल्फिश एक्शन, ये नहीं होना चाहिए। तो ये यज्ञ देखो व्यक्तिगत रूप में भी लग सकता है, फैमिली में भी लग सकता है, बिजनेस में भी लग सकता है, कंपनी में भी लग सकता है, गवर्नमेंट में भी लग सकता है। सबको ये अपना अपना कर्तव्य कर्म करें, जिसकी जैसी पोजीशन है उस पोजीशन के हिसाब से अपना कर्तव्य कर्म करो। आप मैनेजर हो तो भाई आपकी जो ड्यूटी है वो करो, कोई अगर कर्मचारी है, वर्कर है, तो वो अपनी ड्यूटी करेगा। तो ये सफल कैसे होगा, अगर भावना पीछे ठीक होगी, राइट एटीट्यूड अगर ठीक होगा तो ये सक्सेसफुल होगा। जैसे एग्जाम्पल आपको हम देते हैं कि आप लोग सब जो है परिचित हैं, हमारे चिन्मय मिशन में ज्ञान यज्ञ होता है। तो ज्ञान यज्ञ में क्या होता है, स्वामी जी के पॉकेट में तो $1 नहीं है, टन टन गोपाल, वो बोलेंगे भाई ज्ञान यज्ञ करना है, तो लोग फिर तन मन धन से आके जुड़ते हैं। कोई बोलेगा मैं ये काम करूंगा, कोई बोलेगा ये करूंगा, कोई बोलेगा मैं पैसे दूंगा, कोई बोलेगा मैं जगह देता हूं, कोई बोलेगा मैं अन्न देता हूं। फिर जो है हमारी दुनिया भर की कमेटीज बनती हैं, फिर वेलकमिंग कमेटी बनाओ जी, उसके बाद में एक डेकोरेशन कमेटी है, पार्किंग कमेटी है, फूड कमेटी है, क्लीनिंग कमेटी है, दुनिया भर की कमेटी बनती हैं, सब अपनी अपनी सेवा के अंदर करते हैं। अच्छा देखो, यहां सेवा जो है ना उसमें कोई अंतर नहीं है। अब अगर कोई पार्किंग लॉट वाला सोचे कि नहीं हमको पूजा टीम में देना चाहिए था, वो सेवा बेहतर है, तो वो नहीं बेहतर है, सेवा एक है। मगर इसके अंदर ईगो का क्लेश आता है, बहुत लोग अपना ईगो लेके आते हैं, तो फिर ईगो आने से क्या हो जाता है, बोला फ्रिक्शन होता है, रगड़ होती है, फिर स्पार्क होता है, फिर फायर होती है, तो लोग फिर उसके बाद में बौखला जाते हैं, ये क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो अगर आप ईगो के लिए करोगे अपने लिए तो अशांति आएगी। देखो ये इतनी घटना घटेगी, और अगर ईगो आप उसके अंदर नहीं लगाओगे तो आपका मन प्रसन्न होगा, सीधा सीधा एकदम आपको मिलेगा। तो ईगो के साथ करोगे तो विषाद मिलेगा, और बिना ईगो के करोगे तो प्रसन्नता मिलेगी। तो भगवान ने कहा यज्ञार्थात कर्मनो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधन। तो यज्ञ कर्म से जो है हमको प्रसन्नता मिलनी चाहिए, प्रेम बढ़ना चाहिए। देखो सब सेवा जो है ना, सबसे बड़ा साधन है मन शुद्धि का, सबसे बड़ा साधन है मन शुद्धि का ये। मगर हमको जानना होगा सेवा करे कैसे। सेवा आपको करनी है, आपको बराबर याद रखना है यज्ञ रूप से। यज्ञ का मतलब विष्णु, विष्णु का मतलब ईश्वर, ईश्वर का मतलब ईश्वर की प्रसन्नता के लिए हमको सेवा करनी है। बहुत अच्छा। उसके बाद में भगवान कहते हैं, प्रकृति का उदाहरण देते हैं कि देखो सूर्य चंद्र सब अपना अपना काम करते हैं। चंद्रमा में प्रकाश किसका है? सूर्य का है। लोग प्रशंसा किसकी करते हैं? चंद्रमा की करते हैं। सूर्य की कोई नहीं प्रशंसा करता। मगर सूर्य कभी नहीं कहता है कि मेरी किरणों को लेकर लोग उसकी प्रशंसा करते हैं, चलो मैं अपनी किरणें उसको नहीं दूंगा, ऐसा कभी नहीं कहता सूर्य। सूर्य अपना काम करता रहता है। तो अगर हमारा कोऑपरेटिव इंडेवर रहे, सब जगह अगर हम मिलजुल के करें, भगवान की सेवा के लिए करें, तो प्रॉस्पेरिटी होगी। तस्मात सर्वगतम ब्रह्म नित्यम ही यज्ञ प्रतिष्ठितम। तस्मात सर्वगतम ब्रह्म, ब्रह्म मतलब यहां वेद। वेद में क्या है? सर्व कर्म कांड है, अधिकांश जो है कर्म कांड है। तो जहां भी कर्म कांड है वहां वेद है, वहां यज्ञ है, कर्म कांड के अंदर यज्ञ है। तो वेद जो है सर्वत्र जो है छाया हुआ है, ऐसा उन्होंने कहा। जो हम सेवा भाव से काम करते हैं ना, तो देखो उसके अंदर भगवान हमारे हृदय में आके बैठ जाते हैं, भगवान हृदय में आके बैठ जाते हैं। आप लोग को डाउट होगा ये कभी होता है ऐसा? नहीं, सच बात है। सेवा अगर भगवान की प्रसन्नता के लिए हो तो आपके मन के अंदर भगवान आएंगी। भागवत ने ऐसा कहा है कि अगर भगवान की कथा सुनते हो तो कान के द्वारा भगवान आपके हृदय में आके बैठ जाते हैं। तो बैठ के वो क्या करते हैं फिर? बोले वहां पर जितनी गंदगी है उसको साफ करते हैं वो। भगवान चुपचाप तो बैठे नहीं रहेंगे, तो वहां क्या गंदगी है? तो जितनी भी आपकी वासनाएं हैं, मलिनता जो है, उन सबको भगवान साफ करते हैं वहां पर। तो भगवान हमारे हृदय में आके बैठ जाएंगे, अच्छा प्रसन्नता होगी, भगवान खुश होंगे। अगर भीतर भगवान खुश हैं तो क्या होता है, प्रसन्नता हमारे चेहरे पर नजर आती है। आप अंदर से खुश होंगे तो क्या बाहर के आंसू आते हैं? नहीं, प्रसन्नता आती है तो प्रसन्न होंगे। इसलिए कहा गया यज्ञ शिष्टासीन संतो मुच्यन्ते सर्वकिल्म से ही। यज्ञ शिष्ट मतलब जब यज्ञ करने के बाद जो बचता है, जो उसको खाते हैं, उनका मन शांत होता है, प्रसन्न होता है उनका मन। और अगर आप ऐसा नहीं करते हो, यज्ञ रूपी कर्म नहीं करते हो, तो आपको टेंशन होता है, आपको स्ट्रेस होता है, आपको विषाद होता है। अगर ये सब आपको होता है तो उसकी जड़ के अंदर आपको नजर में आएगा कि आप कर्म अपनी पूजा के लिए करते हो, भगवान की पूजा के लिए नहीं करते हो। टेंशन स्ट्रेस ये सब होगी। देखो अगर हम दूसरों के लिए करें, जैसे स्पोर्ट्स के अंदर अब कई खिलाड़ी हैं, अगर उसमें से एक खिलाड़ी अपनी रिकॉर्ड बनाने के लिए लगा रहे, टीम का हित ना देखे, देश का हित ना देखे, तो लोग उसको क्या करेंगे? क्रिटिसाइज करेंगे ना, अरे तुम अपना खाली रिकॉर्ड बनाने में लगे हुए हो। अगर वो देश का हित देखे, पूरी टीम का हित देखे, तो लोग उसकी प्रशंसा करेंगे। तो टीम वर्क जो है बहुत जरूरी है। तो यह भावना खुशी देती है कि प्रकृति में भी यज्ञ भावना है। और हमने प्रकृति चक्र भी देखा, सृष्टि चक्र भी देखा है। अब भगवान एक व्यक्ति से क्रोधित होते हैं, एक ऐसा व्यक्ति है उसका आचरण देखकर भगवान बहुत क्रोधित होते हैं। वो व्यक्ति कौन है उसको देखते हैं।
एवं प्रवर्तितं चक्रम्।
एवं प्रवर्तितं चक्रम्।
नानुवर्तयतीह यः।
नानुवर्तयतीह यः।
अघायुरिन्द्रियारामः।
अघायुरिन्द्रियारामः।
मोघं पार्थ स जीवति।
मोघं पार्थ स जीवति। एवं प्रवर्तितं चक्रम्।
नानुवर्तयतीह यः। अघायुरिन्द्रियारामः।
मोघं पार्थ स जीवति।
एवं प्रवर्तितं चक्रम्। एवं प्रवर्तितं चक्रम्। ये कौन सा चक्र है? अभी आगे बताया था ना, कौन सा चक्र? सृष्टि चक्र एक बताया था। क्या चक्र था? कि ब्रह्म है, ब्रह्म से वेद आया, वेद से वेद में कर्म लिखे हुए हैं, उन कर्म के हिसाब से यज्ञ आया, यज्ञ करने से बारिश होती है, बारिश होने से अन्न होता है, अन्न होने से जीव बनते हैं। याद आया आप लोग को? अब वो जीव जो है इसके अंदर दो भाग हो जाएंगे। अगर जीव इस लाइफ के अंदर अगर रियलाइज कर जाता है तो क्या बन जाता है? वो ब्रह्म हो जाता है। देखो सर्कल पूरा हुआ। ब्रह्म से वेद आया, वेद के अंदर कर्म लिखे हुए हैं, कर्म को यज्ञ रूप से करना है, यज्ञ करने से बारिश होती है, बारिश होने से अन्न, अन्न उत्पन्न होने से जीव, जीव अगर रियलाइज कर जाए, नहीं तो वो अपना जन्म मृत्यु के चक्र में जीव घूमता रहेगा। तो ये एवं प्रवर्तितम चक्रम न अनुवर्तयति यही, मगर कोई इसको फॉलो नहीं कर रहा है। सृष्टि एक के बाद एक दूसरे के लिए काम करती चली जा रही है, दूसरों के लिए करती जा रही है, मगर एक ऐसा आदमी है जो इसका जो है पालन नहीं करता। जो पालन नहीं करता तो एक जो रिदम चल रहा है ना, उस रिदम के अंदर थोड़ा सा ब्रेक होता है, रिदम के अंदर एक ब्रेक हो जाएगा, आउट ऑफ ट्यून हो जाएगा। तो नेचर के अंदर एक रिदम है, वो रिदम के अंदर गड़बड़ी हो जाती है। तो भगवान कहते हैं ऐसा व्यक्ति क्या है? अघायु। अघायु का मतलब बता कि वो पापायु है, वो पापी है। भगवान बहुत कठोर शब्द यूज करते हैं। जो इस सृष्टि चक्र के हिसाब से उसके पीछे में जो कर्म का उद्देश्य है उसको जो नहीं मानता है, भगवान कहते हैं वो पापी है, वो अघायु है। अच्छा, और इतना ही नहीं, उसका नाम दिया वो इंद्रिय रामा है। इंद्रिय रामा मतलब इंद्रियों में रमन करता है। इंद्रियों में रमन करता है मतलब इंद्रियों के विषयों में रमन करता है। हमारे पास पांच इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रियां, पांच विषय हैं। अगर आप आत्मा राम नहीं हो तो आप इंद्रियां राम हो। कैसे कह दिया आपने? अरे दो तो चीजें हैं भाई इस दुनिया के अंदर, एक है आत्मा और दूसरा है अनात्मा। अगर आप आत्मा राम नहीं हो तो आप क्या राम हो? अनात्मा राम। तो यहां भगवान ने कहा इंद्रिया राम। इंद्रिया राम का मतलब आप जो है इंद्रियों के विषयों में। तो इंद्रियां और इंद्रियों के विषय किससे बने हुए हैं? अनात्म वस्तु है। आप अनात्मा में रमन कर रहे हो। बहुत अच्छा, मोघम पार्थ सजीवती, मोघम मतलब व्यर्थ, बोला उसका जीवन व्यर्थ है, उसका जीवन व्यर्थ है, इस जीवन में तुम ब्राह्मण बन सकते थे, जैसा हम बताते हैं वैसा अगर तुम करते तो तुम ब्राह्मण बन सकते थे, मगर तुमने नहीं किया, तुमने अपनी मनमानी की, इसलिए तुम्हारा जीवन व्यर्थ है, मोग है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो कर्तव्य कर्म नहीं करता है, हायर गोल के लिए नहीं करता है, सोसाइटी के लिए नहीं कर रहा है, या देश के लिए नहीं कर रहा है, या भगवान के लिए नहीं करता है, केवल अपने लिए करता है, ऐसा व्यक्ति क्या है? अघायु है, पापी है। कहते हैं उसका जीवन व्यर्थ है। कौन है भाई ऐसा व्यक्ति? तो देखो इसके अंदर एक वर्ड आता है सह, मोघम पार्थ सह जीवती। अच्छा बोल किसको रहे हैं भगवान? ये सारा संवाद अर्जुन के साथ हो रहा है और कोई नहीं है। अब भगवान यहां पर देखो इतनी चालाकी कर गए कि उसका नाम नहीं लिया, नहीं तो हर श्लोक में 10 बार नाम लेते हैं पार्थ, यहां नाम नहीं लिया, यहां इसलिए नाम नहीं लिया कि ये कठोर शब्द कहते थे कि अर्जुन तुम पापी हो, तो उसके दिल में लग जाता। इसलिए भगवान कहते हैं स, स मीन्स द थर्ड पर्सन। अब आप लोग अब इंटेलिजेंट हो, आप समझ लो वो स कौन है। तो यहां पर हमको इशारा समझना चाहिए। इशारा क्या है? इशारा ये है कि साधक भक्त शिष्य को ऐसा करना चाहिए जैसा उसका गुरु कहे। अर्जुन के गुरु कृष्ण हैं, जगत गुरु, और उनके कहने के बाद भी अर्जुन खड़ा होकर युद्ध नहीं कर रहा है, वो अपनी ड्यूटी से भाग रहा है, भाग जाना चाहता है वहां से, युद्ध भूमि से चला जाना चाहता है, अपना कर्तव्य कर्म नहीं करना चाह रहा है। ऐसे व्यक्ति को भगवान कहते हो तुम पापी है, तुम अघायु है। अच्छा भगवान आप इतनी बात जब कह रहे हो, इतना कड़े कड़े शब्द कह रहे हो, तो ठीक है हम देखते हैं। अच्छा अर्जुन की जगह आप अपने आप को लीजिए, अपने जीवन में देखिए आप क्या करते हो, आप क्या विषयों में रमन करते हो? अगर करते हो तो आप इंद्रिया रामा हो, हमको कहना नहीं होगा आप इंद्रिया रामा हो। आप सुस्त हो, कुछ भी नहीं करते हो, ना विषय में रमन करते हो ना आत्मा में रमन करते हो, एक ही बात है, फिर भी आपका जीवन बेकार है, ना यहां का सुख भोगा ना वह सुख भोगा। लोग कहते हैं ना कि अगर आत्मा अगर नहीं मिले चलते चलते तो हमारा विषयों का सुख भी हाथ से निकल गया। अभी तो हम कचौड़ी पकौड़ी खाते हैं सुख मिलता है तो वो भी हाथ से निकल गया। भगवान कहते हैं कि आपको कर्तव्य कर्म करना चाहिए, नहीं तो आप पापात्मा हो। आगे भी भगवान ने कहा भुंजते ते तू अघम पापा ये पचंती आत्मकारणात्। आत्मकारणात् जो अपने लिए पका रहा है कभी, उसको भी कहा कि तुम पाप खाते हो। देखो इसी को पढ़ के शायद हमारे पूर्वज के अंदर फैमिलीज के अंदर बनाते थे ना रोटी, बनाते थे एक कुत्ते की रोटी है, एक गाय की रोटी है, ये चिड़िया का दाना है, ये है वो करते थे। तो कम से कम वो तो कह सकते थे कि हम देखो दूसरों के लिए भी बनाते हैं, प्राणियों के लिए भी बनाते हैं। तो आज हम बनाते हैं, आप बोलो कि चिड़िया कहाँ है, कहाँ कहाँ गाय है, कहाँ कुत्ता है, कहाँ बिल्ली, कुछ तो है नहीं यहाँ पर। आगे ऐसा होता था। तो इंद्रियाराम कौन है? ये ऐसा व्यक्ति है कि जो नेचर से प्रकृति से लेता है मगर देता नहीं है, ये ले रहा है खाली। हम लोगों ने पंच महाभूतों से लिया है, हम जो है हवा से लेते हैं, पानी से लेते हैं, पृथ्वी से लेते हैं, सबसे लेते हैं, माता पिता से लेते हैं, सबसे लिया है मगर देता नहीं है। ऐसा व्यक्ति को भगवान कहते हैं कि ये क्या है? बोला ये इंद्रियाराम है। एक बार कुछ फैमिली मिलके पिकनिक ठीक किया, चलो राजू जी के घर के पास में पिकनिक स्पॉट है लेक फॉरेस्ट में, वहां चलेंगे। सब कोई राजी हो गए। तो पिकनिक का भाई क्या स्ट्रक्चर क्या होता है, सब कोई अपना कुछ कुछ लेके आते हैं ना। तो बोले आप भी ले आओ, आप भी ले आओ, आप भी ले आओ, सब कुछ अपना अपना कुछ लेके आए, फिर वहां पिकनिक करते हैं। तो एक आदमी बोला मैं भी आऊंगा, मैं भी लेके आऊंगा। बोला हाँ लेके आओ। क्या लेके आओगे? बोले बीबी बाल बच्चे को लेकर आऊंगा। बोले क्या हुआ बीबी बाल बच्चों को क्यों लेके? और कुछ नहीं लाओगे? बोले नहीं कुछ खाने वाला भी तो चाहिए, नहीं तो आपका खाना बेकार जाएगा। आप तो सब लेके आओगे, बाकी सब तो खाना लेके आ रहे हैं। देखो चक्र है, सब कोई कंट्रीब्यूट करो। मगर ये व्यक्ति क्या कहता है, मैं आऊंगा बीवी बच्चों को लेके आऊंगा, हम नहीं लाएंगे बीवी बच्चों को तो आपका खाना बर्बाद जाएगा। देखो ये वही है, सृष्टि चक्र चल रहा है, उस सृष्टि चक्र में सबको ही अपना योगदान दे रहे हैं, तब तो इतनी बड़ी सृष्टि चलती है। वो इंद्रिय नाम है मोघम। मोघम मतलब भगवान दुखी है और कहते हैं मोघम पार्थ स जीवती, मोघम पार्थ स जीवते, ऐसा व्यक्ति जो है बेकार जी रहा है। देखो मोग वर्ड का उल्टा होता है अमोघ। अमोघ मतलब जो कभी व्यर्थ नहीं जाता। जिनी अमोग करी रघुपति बाना, जब हनुमान जी क्रॉस करते हैं ना समुद्र को तो कैसे जा रहे हैं? बोले जैसे तीर की तरह, जैसे भगवान ने तीर छोड़ा है और हनुमान जी एकदम सीधा उस तीर की हिसाब करते हैं, और तीर छोड़ने के बाद में वो तीर उनका कैसा है भगवान का? अमोग। बोले व्यर्थ नहीं जाएगा वो अपने टारगेट को हिट जरूर करेगा। और यहां पर कैसा मोग है? उल्टा, आपका जीवन ही बेकार है। देखो एक सुभाषित है, उसमें कहा है ऐसा न विद्यान तपो न दानम ज्ञानम न सीलम न गुणो न धर्म ते मृत्यु लोके भूमि भार भूता मनुष्य रूपे न मृगाश्च चरंती। ऐसा व्यक्ति जिसको ये नहीं मालूम है, जिसके जीवन में कोई तप नहीं है, कोई दान नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है, सील नहीं है, गुण नहीं है, धर्म नहीं है, बोले ऐसा व्यक्ति जो है भूमि के ऊपर भार है, इज अ बर्डन। और वो कैसा है? मनुष्य रूपे न मृगाश्चरंती। बोले मनुष्य रूप में पशु है, कुछ नहीं करता, केवल फर्क इतना ही है कि पशु के अंदर जो है पूंछ और सींग होती है, इसमें मनुष्य में पूंछ और सींग नहीं है, इतना ही फर्क है। और सच पूछो तो ये पशु का भी अनादर है, ऐसा मनुष्य जो है पशु के योग्य भी नहीं है। पशु की उपमा देना भी पशु का अनादर करना है। क्यों भाई पशु का अनादर क्यों करना है? बोले पशु जब देखता है कि मैं तो काम करता हूं, ये मनुष्य काम भी नहीं करता है, अब बल्कि लेता ही लेता है। देखो पशु जो है जीवित काल में भी काम करता है, मर के भी वो कुछ दे के ही जाता है। और ये मनुष्य ऐसा है कि खाली प्रकृति से लेता है देता नहीं है। अब मर के तो हमारे शरीर का कोई दाम ही नहीं है, कोई लेने वाला नहीं है। बल्कि पशु सोचते हैं कि अच्छा है ये कि भगवान ने हम लोग का खाना अलग बनाया, हम तो घास खाते हैं। अगर ये रियली पशु हो जाता तो हमको घास भी नहीं मिलती खाने को। ये पशु का भी इंसल्ट करने लायक है। अच्छा एक बच्चे से किसी ने पूछा कि भाई आप क्या बनना चाहते हो? तो बोलता मैं पायलट बनना चाहता हूं। बोले क्यों? बोले माता पिता कहते हैं कि तुम मेरे इस भूमि के ऊपर भार हो, इसलिए पायलट बन जाऊंगा, कम से कम भार तो है। तो भगवान कहते हैं यज्ञ करो, लोक में यज्ञ चल रहा है, इसको देखो, मनुष्य कर्म का अधिकारी है और इसके अंदर एक रिदम है। जैसे अगर एक ऑर्केस्ट्रा पार्टी होती है ना जिसके अंदर बहुत से लोग बैठ के बजाते हैं, पंडित रविशंकर ने एक जगह किया कितने 10,000 इंस्ट्रूमेंटलिस्ट की 1,000 इंस्ट्रूमेंटलिस्ट बैठ के कर रहे हैं। अच्छा उसमें से अगर एक आदमी अगर बेसुर बजाए तो देखो रिदम गड़बड़ हो जाएगा, अच्छा नहीं सुनाई पड़ेगा। यहां भी एक सृष्टि चक्र में एक रिदम है, आप रिदम को गोलमाल कर रहे हो और उसका जीवन कहते हैं पापमय होगा। अब देखो शंकराचार्य जी क्या कहते हैं, शंकराचार्य जी कहते हैं इस लोक में जो मनुष्य कर्माधिकारी होकर, केवल मनुष्य को कर्म का अधिकार है, देखो एक एक वर्ड जो है इतना चुन के शंकराचार्य जी ने लिखा है कि इस लोक में केवल मनुष्य कर्म का अधिकारी है, बाकी सारे कंप्यूटराइज हैं, जिनको जो काम दिया है उनको करना है, आम के वृक्ष को आम देना है, उसकी हिम्मत ये नहीं है कि वो कह दे कि हम आम नहीं देंगे, और ये भी नहीं कर सकता है कि नहीं आम के बदले हम आपको जामुन देंगे, ये भी नहीं कर सकता वो। तो हर पशु पक्षी कीट का जो है एक एक कर्म बांधा हुआ है, उसको वही काम करना है, केवल एक मनुष्य जो है वो कर्म का अधिकारी है। इस प्रकार ईश्वर द्वारा वेद और यज्ञ पूर्व चलाए हुए इस जगत चक्र के अनुसार वेदाध्ययन यज्ञादि कर्म नहीं करता, कौन सा मनुष्य, जिसको भगवान ने सह कहा, थर्ड पर्सन, जो अपने लिए करता है, जो वेद अध्ययन और यज्ञ नहीं करता है। यज्ञ नहीं करता है मतलब जो ईश्वर की खुशी के लिए नहीं करता है, ईश्वर की खुशी के लिए नहीं करता है तो किसकी खुशी के लिए करता है, अपनी खुशी के लिए करता है, ऐसा आदमी हे पार्थ वह पापायु अर्थात पापमय जीवन वाला और इंद्रिय रामी है, वो पापमय जीवन कर रहा है। भगवान को अगर आपके अंदर में नहीं है, भगवान आपके अंदर में नहीं आते हैं तो आपका मन जो है विषयों में है, अर्थात इंद्रियों द्वारा विषयों में रमन करने वाला व्यर्थ ही जीता है, उस पापी का जीना व्यर्थ ही है। वो कौन पापी है, हम लोग हैं पापी, हम लोग हैं सब। इसलिए इस प्रकरण का अर्थ यह हुआ कि अज्ञानी अधिकारी को कर्म अवश्य करना चाहिए। अगर हम सब अज्ञानी हैं, अज्ञानी किसको कहते हैं, अज्ञानी उसको कहते हैं जिसको अपने ट्रू नेचर का, अपने सेल्फ का, अपने आत्मा के बारे में ज्ञान ना हो, वो अज्ञानी है। ज्ञानी कौन है, जिसको उसके बारे में ज्ञान हो वो ज्ञानी है। तो आप लोगों को आत्मा के बारे में ज्ञान है, तजुर्बा है, अनुभव है, नहीं है, इसलिए हम सब अज्ञानी हैं। शंकराचार्य जी कहते हैं अज्ञानी अधिकारी को कर्म अवश्य करना चाहिए। फिर और उसको साफ करते हैं शंकराचार्य जी, अनात्मज्ञ, अनात्मज्ञ अधिकारी जिसको आत्मा का ज्ञान नहीं है उसको कहते हैं अनात्मज्ञ अधिकारी। पुरुष को आत्मज्ञान की योग्यता प्राप्त होने के लिए, आत्मज्ञान की योग्यता पाने के लिए आपको क्या करना है, ज्ञान निष्ठा प्राप्ति के लिए कर्म योग का अनुष्ठान अवश्य करना चाहिए। मैं आपको एक एक वर्ड सुना रहा हूं इस वास्ते कि अगर मेरी बात पर नहीं विश्वास होता, मैं 3 साल से कहता आ रहा हूं कि कर्म योग करना है करना है, तो शंकराचार्य जी जो कह रहे हैं आज मैं पढ़ के आपको एक एक लाइन एक एक शब्द सुनाता हूं। फिर से एक बार कह देता हूं, अनात्मज्ञ, अनात्मज्ञ मतलब जिसको आत्मा का ज्ञान नहीं है, अनात्मज्ञ अधिकारी पुरुष को आत्मज्ञान की योग्यता प्राप्त करने के, आत्मज्ञान नहीं
योग्यता,
आत्मज्ञान पाने की योग्यता, उसके लिए क्या करना चाहिए, पहले ज्ञान निष्ठा प्राप्ति के लिए कर्म योग का अनुष्ठान अवश्य करना चाहिए, ऐसा शंकराचार्य जी बताते हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि ग्रंथ में आत्मज्ञान से रहित कर्माधिकारी के लिए कर्मों के अनुष्ठान करने में बहुत से प्रसंगानुकूल कारण कहे गए और उन कर्मों के न करने से बहुत से दोष भी बतलाए गए। भगवान ने कहा कि आपको करना चाहिए कर्म, अगर आप नहीं करोगे तो क्या होगा, तो आप, भगवान ने आपको बताया कि आप जो है स्टेन, चोर हो, भुंजते पापा, आप जो है पाप खा रहे हो, अघायु आप पापी हो, मोघ जीवन आपका जीवन व्यर्थ है, अगर नहीं करते हो तो दोष क्या क्या है भगवान ने जो है पिछले कई श्लोकों में बताया है, और अगर करते हो तो क्या होता है, आपको ज्ञान प्राप्त की योग्यता मिलेगी। देखो ज्ञान प्राप्ति करना दूसरी चीज है, ज्ञान प्राप्ति की योग्यता, अब जैसे हमारे बच्चे लोग दे रहे हैं ना एसएटी एसीटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, एडमिशन पाने की योग्यता, पहले ये योग्यता होगी, उसके बाद में वो जाके दिखाएंगे कि हमारे पास में योग्यता है, तब आपका एडमिशन होगा। तो एक ज्ञान पाना है और एक ज्ञान पाने की योग्यता पाना है, जिसको मैं कई बार कह चुका हूं, हमारे गुरुजी भी कहते हैं दो स्टेप हैं, एक तो है प्यूरिफिकेशन ऑफ माइंड, मन की शुद्धता, वो मन की शुद्धता जो है ज्ञान पाने की योग्यता है। मन की शुद्धता कैसे होगी, कर्म योग से शुद्धता होगी। जब मन शुद्ध हो जाएगा तब आप ज्ञान पाने के लिए योग्य हो गए, ज्ञान पाने के अधिकारी हो गए, फिर ज्ञान एक मिनट में होगा, योग्यता बहुत समय लगेगा, कई जगह तो लिखा है कई जन्म लगते हैं। बहुत अच्छा। अच्छा भगवान मेरे को यह बताओ, क्या सभी को कर्तव्य कर्म करना पड़ेगा, कोई ऐसा व्यक्ति भी है जिसको कर्तव्य कर्म नहीं करना पड़ता, एक्सेप्शन टू द रूल है कि नहीं कुछ, जैसे हम संसार में देखते हैं संस्कृत में जब आप ग्रामर रूल पढ़ोगे तो बीच बीच में एक्सेप्शन आ जाएंगे, ये रूल यहां नहीं लगता है, या रस्ते में आप जब यहां पर ट्रैफिक चलता है तो उसके अंदर आप देखते हो जब एम्बुलेंस या फायर ब्रिगेड आती है फिर वो रूल नहीं मानती है, उल्टी तरफ जाती है ना एक्सेप्शन उनको, मगर इंडिया में तो बेचारे कुछ नहीं कर पाते, एम्बुलेंस वो पैं 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 करती रह जाती है, गाड़ियां सामने इतनी होती है कुछ नहीं होता है। अच्छा स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी क्या होता है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर भी एक्सेप्शंस हैं, हम लोग तो आज तक पढ़ते आए ना कि ज्ञान के बिना आपकी मुक्ति नहीं होगी, मगर कहीं कहीं ये भी लिखा हुआ है कि भगवान ने अगर अनुग्रह कर दिया तो मुक्त हो जाता है, भगवान आ गए, भगवान ने अनुग्रह कर दिया, कृपा कर दी, हो गई मुक्ति, या गुरु ने कृपा कर दी, मोक्ष मूलम गुरु कृपा, अगर गुरु ने कृपा कर दी फिर भी मुक्ति हो गई। तो ये सब एक्सेप्शन है, कई बार हम लोग प्रोग्राम देखने जाते हैं ना, हम तो एक ही उदाहरण दे सकते हैं, चिन्मय मिशन के जितने भी प्रोग्राम होते हैं आप लोग तो टिकट लेके बैंकवेट में जाते हो, एक्सेप्शन टू द रूल कौन है, हम लोग बिना टिकट के जाते हैं। अभी प्रोग्राम हुआ वहां पर, डांस प्रोग्राम हुआ, वहां भी लोग टिकट से गए, एक्सेप्शन टू द रूल। तो अर्जुन जानना चाहता है कि भगवान आप हमको ये बताइए कि कोई एक्सेप्शन ऐसा भी है जिसको कर्तव्य कर्म नहीं करना पड़ता, आपने तो इतना जोर दिया कि यज्ञ कर रूपी कर्म सबको करना है, मुझको ये बताओ कोई ऐसा व्यक्ति है, कहीं मैं उसमें तो नहीं हूं उस कैटेगरी में, मैं तो ये जानना चाहता था कि कर्तव्य कर्म से मैं भाग रहा हूं, जानना चाहता हूं कि ऐसा भी कोई व्यक्ति है, भगवान कहते है ना, मैं बताता हूं सुनो। 17 नंबर,
यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्नेव च संतुष्टः
तस्य कार्यं न विद्यते यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्नेव च संतुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते
यतु आत्मरति एव स्याद। तू मिस बट, एक ऐसा व्यक्ति है जिसको कर्तव्य कर्म नहीं करना है, क्या क्वालिफिकेशन है उसकी, तो कहते हैं आत्मरति एव स्यात्, जो आत्मा में रति करता है, जो आत्मा में रमन करता है, उसको नाम दिया भगवान ने आत्मरति। जो आत्मरति है उसको काम नहीं करना है, कर्तव्य कर्म नहीं करने हैं। हम लोग कौन है? हम लोग विषय रति हैं। हम सब किस में है? विषय रति में है, इसलिए हमें कर्तव्य कर्म करना है। तो यश रति आत्मनि आत्मरति। दूसरा क्या कंडीशन है? आत्मतृप्तश्च मानवः। देखो एक यहां पर कह दिया मानव, केवल मनुष्य, पशु पक्षी पेड़ वृक्ष नहीं कर सकते ये। ऐसा व्यक्ति कौन है? बोले एक मनुष्य है। इसका मतलब क्या हुआ? केवल मनुष्य लोक में ही एक आप ऐसा स्थिति पा सकते हो, दूसरी जगह कंपलसरी आपको काम करना है, मर जाओ तब भी करना है। यहां भगवान कहते हैं जीते जी भी कर्तव्य कर्म नहीं करना है। अच्छा, आत्मतृप्त सेटिस्फाइड इन सेल्फ आत्मरति। आत्मनि एव च संतुष्ट कंटेंटेड। संतुष्ट है, कंटेंटेड। अच्छा, ये कंटेंटमेंट कैसा है ना? फुल कंटेंटमेंट है। हम सबको संतुष्टि आती है, खाना खा लिया, पेट भर गया, संतुष्ट। चार घंटे के बाद में संतुष्टि गई, फिर भूख। तो ये कहते हैं जो आत्मरति है, जो आत्मतुष्ट है, आत्मसंतुष्ट है, ऐसे व्यक्ति को कहते हैं तस्य कार्यम न विद्यते। उसका कोई कर्तव्य कर्म नहीं है। बहुत अच्छा। तो अगर ऐसा मन आपका बन गया है कि आपका मन बराबर आत्मा में है, आत्मा से तृप्त है, आत्मा से संतुष्ट है, तो आपके लिए कर्तव्य कर्म नहीं है। रमन महर्षि ने भी कहा नष्ट मानस उत्कृष्ट योगिनः कृतम अस्ति किम स्वस्थितिम यता। स्वस्थितिम यता, जो अपनी स्थिति के अंदर है, स्वस्थिति जो आत्मा के अंदर में स्थित है, उसके लिए क्या कर्म है? कोई कर्म नहीं है। नष्ट मानस उत्कृष्ट योगिनः, जिसका मानस, जिसका इग्नोरेंस, जिसकी वासना खत्म हो गई, बोलो तो उत्कृष्ट योगी है, सबसे अच्छा योगी है। ऐसे योगी के लिए कर्म क्या है? कोई कर्म नहीं है उसके लिए। फिर भगवान कहते हैं कि भाई हमको ये बताओ, इसमें आत्मरति, आत्मतृप्त और आत्मनि संतुष्ट में डिफरेंस क्या है? आत्मरति किसको कहते हैं? तो यहां पर शंकराचार्य जी कहते हैं आत्मरति का मतलब होता है आत्मनि एव रति। एव रति मींस अलोन, Only reveling in Atman। और साथ में एक छोटा सा शब्द लगा देते हैं न विषयेषु यस्य स आत्मरति। जो विषयों में रमन नहीं करता है, केवल आत्मा में रमन करता है, वो आत्मरति है। पहला हुआ। अच्छा, आत्मतृप्त किसको कहते हैं? तो शंकराचार्य जी कहते हैं आत्मना एव तृप्त न अन्न रसादीनाम। अन्न रसादीनाम माने हमको तृप्ति किससे मिलती? अन्न से, रस से, टेस्ट से, वहां हम तृप्त होते हैं, अन्न रसादीनाम। तो ये कहते हैं कि नहीं, वो अन्न से तृप्त नहीं है, वो आत्मा से तृप्त है। संसार के अंदर लोग तृप्त होते हैं खाना खाने के बाद तृप्त होते हैं, अन्न या रस से, मगर ये व्यक्ति इनकी बात नहीं कर रहा है, रस की नहीं बात कर रहा है, अन्न की बात नहीं कर रहा है, वो आत्मा में तृप्त है। और आत्मनि संतुष्ट क्या है? तो आत्मनि संतुष्ट वो कहते हैं कि जो आत्मा में ही संतुष्ट है, बाह्य विषयों के लाभ से जिसको संतोष होता है, उनकी अपेक्षा करके जो आत्मा से ही संतुष्ट है वो संतुष्ट है। लोगों को विषयों के प्राप्त होने से संतोष होता है, तृप्त हुआ किससे? अन्न से। संतोष किससे होता है लोगों को? विषयों के मिलने से संतोष होता है। तो ये है आत्मरति और ये है आत्मतृप्ति और आत्मसंतुष्टि। आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं, आपको बहुत सहज से समझ में आ जाएगा, फिर आप जीवन में कभी भूलोगे नहीं। मान लीजिए आप बहुत भूखे हैं, 3, 4, 5, 6, 7 दिन से आप भूखे हैं। आपको खाना मिला, आप अगर नॉर्थ इंडियन है तो आपको साउथ इंडियन मिला, आप अगर साउथ इंडियन है तो आपको नॉर्थ इंडियन मिला, या अशोक जी को चाइनीज मिला। अब क्या होगा, अशोक जी को पसंद तो है नहीं, उपाय कुछ है नहीं, और भूख इतनी लगी है खाना होगा, तो उन्होंने भूख मिटाने के लिए खा लिया, तो हो गया आत्मतृप्त, आत्मतृप्त हो गया। अगर मान लो आपको बहुत भूख लगी है और आपको अपनी मनपसंद का खाना मिला, तो आप थोड़ा सा ओवर ईटिंग भी कर लोगे उस टाइम में, तो वो जो आपको जॉय मिलता है वो आत्मसंतुष्ट है, बहुत थोड़ा थोड़ा फर्क आएगा। और उसके बाद आप जो है एक महीने बाद उस खाने को याद करोगे, फिर फलाने की शादी में है, वहां पर उसने पता नहीं गुलाब जामुन के ऊपर पता नहीं रबड़ी दी थी, बड़ी अच्छी थी, आप याद करते रहते हो। तो वो क्या है, आत्मरति ही है, समझे आप। आपको बहुत भूख लगी है, जहां पर जैसे कहते हैं सुभाषित में लिखा हुआ है, क्षुधा तुरानाम रुचि न बेला, आपको भूख लगी है बहुत, उस टाइम आप टाइम भी नहीं देखते हो, न बेला रुचि भी नहीं देखते हो कि हमारी रुचि के हिसाब खाना है कि नहीं, अब इतनी भूख लगी है खा लो जो मिला है खा लो। उस टाइम में अशोक जी चाइनीज खा लेंगे, उपाय नहीं है कुछ, जैसे तैसे खा लेंगे। मगर अगर अशोक जी को आप चना दे दो, समोसे दे दो, भटूरा दे दो, तब जो तृप्ति होगी उसको कहते हैं आत्मसंतुष्टि। पहली वाली हुई आत्मतृप्ति, दूसरी हुई आत्मसंतुष्टि। अब उसके बाद में अगर अशोक जी ने 2 दिन के बाद में या 20 दिन के बाद में 2 साल के बाद में याद किया कि फलाने की शादी के अंदर में हमने वो जो समोसा खाया था, वो समोसा आज तक लोग पूछेंगे, अशोक जी आपने क्या ब्रश नहीं किया आज तक, अभी तक आपको स्वाद याद है। वो ही आत्मरति, देखो क्लियर हुआ। तो भूख लगने पर क्या होता है, भूखे भजन न होए गोपाला, ले लो अपनी कंठी माला, हमको नहीं चाहिए भगवान तुम्हारी, हम माला माला सब ले लो, हमको अभी माला वाला नहीं चाहिए, पेट भरना है पहले। बहुत सुंदर ये भी हुआ, आत्मरति। देखो ऐसा कई बार होता है, भगवान राम भी जो है ना सबरी के यहां खाने के 14 साल के बाद भी सबरी के जो है बेर याद किए, वो आत्मरति थी। बहुत लोग करते हैं ऐसा, होता है हमारे जीवन में भी, आपको याद होगा ये जो है वहां का खाना, यहां का ये यार, वो सब याद रहता है। हमारे यहां पर हमारे गुरु, जब हम लोग वेदांत कोर्स में एडमिशन के लिए हम लोगों ने जब अप्लाई किया, तो हमारे जो है आचार्य स्वामी अद्वयानंद जी ऑल द वे फ्रॉम साउथ इंडिया केम टू कलकत्ता फॉर आवर इंटरव्यू। इंटरव्यू लेते हैं कि हम योग्य हैं कि नहीं, तो उनको हमने घर में बुलाया, तो उनको हम लोगों ने फिर जो है भिक्षा दी, तो पटल झींगा मतलब तोरी बहुत अच्छी तरह से उनको भोजन वोजन करो। बोली ये क्या है, ये पटल हमने कभी जीवन में देखा नहीं,
परवल कभी देखा नहीं।
बोले मेरे को कच्चा दिखाओ, फिर उसको फ्रिज से कच्चा निकाल के दिखाई, ये परवल है। बोले साउथ इंडिया में हमने देखा नहीं आज से। खा के उसको कहना, स्वामी जी मत खाइए ऐसे, बनाने में खा के देखूंगा
कच्चा ही खा रहे।
और एक जो तोरी आप जो लाइन वाली गार्ड वाली तोरी जो होती है ना इतनी लंबी लंबी, हमारे यहाँ इतनी इतनी मिलती है, छोटी छोटी मिलती है, यहाँ नहीं होती है,
नहीं धार होती है।
तो उसका जो है खाना ना बना, बोले ये क्या है,
उसमें स्टाफ करके बनाया था,
बोले ये नहीं। अच्छा उसके बाद हम लोग के 3 साल के बाद कोर्स के बाद भी पूछते हैं तुम्हारे घर में जो खाना खाया था वो हमें अभी तक याद है। हम लोग विभूति जाते हैं वहां पर जो है प्रेम प्रेम करके कुक है, मारवाड़ी है, मगर पता नहीं 120 किस्म की मिठाई जानता है। और हर बार वो मिठाई बनाता है, जो भी मिठाई बनाता है लोग खाते हैं फिर बाद में याद भी करते हैं। विभूति का खाना बहुत अच्छा है, पवे का खाना कंपेरेटिव है, हालांकि उसका भाई है वहां उसका भाई वहां पवे के अंदर है आश्रम में,
अभी नहीं है पहले
हम लोग के टाइम में था। तो हम लोग याद करते रहते हैं, ये सब आत्मरति है। तो ये क्यों उसके अंदर आत्मा में रमन होता है, तुष्ट है और संतुष्ट है, क्योंकि उसको जो है सोर्स ऑफ सुख पता लग गया। असली जो सोर्स है जहां से सारा सुख आता है, सुख का सोर्स केवल एक है, उसको उस सुख का सोर्स का पता लग गया, इसीलिए वो भनभन भनभन वहीं घूमता रहता है। यहां तो दिखाई नहीं पड़ता है, अगर आप जो है इंडिया के दिल्ली साइड में आगरा साइड में अगर जाओ ना कि जहां मिठाई की दुकान है, उस मिठाई की दुकान में जहां पेठा उठा होता है वहां पर जो है मक्खियां कैसे भिन भिन आती रहती हैं, आप लाख उनको दूर करो घूमती रहे। तो ये आदमी उसको भी पता लग गया कि मीठा यहां है, आत्मा के अंदर मिठास है, आत्मा के अंदर आनंद है, तो वो जो है आत्मा में ही तुष्ट है, उसी में संतुष्ट है और उसी में रमन करता रहता है। ऐसे आदमी के लिए कोई कर्तव्य कर्म नहीं है और कोई कर्तव्य कर्म करने के लिए कोई फोर्स भी नहीं कर सकता उसको, कोई फोर्स नहीं है। एग्जाम्पल आप देख लो हमारे तपोवन महाराज, कोई कर्तव्य कर्म नहीं है। ठाकुर रामकृष्ण, कोई कर्तव्य कर्म नहीं है। अरे भाई देखो आप कर क्यों रहे हो, कर्म क्यों करते हो, खुशी के लिए ही तो करते हो। हर कर्म के पीछे केवल एकमात्र आपका उद्देश्य है कि हमको खुशी मिले, अब उसको खुशी का सागर मिल गया है, अब क्या करना है उसको। आपको अगर पाना है तो करना है, कुछ अगर लेना है इस दुनिया से तो आपको करना है, मगर जो ज्ञानी है उसको इस दुनिया से कुछ नहीं लेना है, क्योंकि उसको सुख नहीं चाहिए, उसको सुख का जो है स्रोत पता लग गया है, इसलिए उसका कोई कर्तव्य कर्म नहीं है। मुंडक उपनिषद में आया है आत्म क्रीड़ा आत्मरति क्रियावानेश ब्रह्म विदाम वरिष्ठ, सेम चीज एक ही चीज बताते हैं वहां भी, आत्मरति। अब क्यों ही उसको कर्तव्य कर्म करना है, तो इसके बाद में 18वें श्लोक में ये दोनों श्लोक एक साथ आते हैं, क्यों नहीं उसको करना है, इसको भगवान सफाई देते हैं। तो हम केवल उसको पढ़ लेते हैं, श्लोक को चैंट कर लेते हैं, उसका मीनिंग हम लोग अगले दिन देखेंगे।
नैव तस्य कृते नाथः,
नैव तस्य कृते नाथः,
नाकृते नेह कश्चन,
नाकृते नेह कश्चन,
न चास्य सर्वभूतेषु,
न चास्य सर्वभूतेषु,
कश्चिदर्थव्यपाश्रयः,
आश्रयः, नैव तस्य कृते नार्थः, नाकृते नेह कश्चन, न चास्य सर्वभूतेषु, कश्चिदर्थव्यपाश्रयः।
न एव तस्य कृते न अर्थ। उसको इस लोक में कर्म करने का कोई प्रयोजन ही नहीं है। किसको? ज्ञानी को। क्यों प्रयोजन नहीं है? बोला प्राप्त भी लेना ही नहीं हमको कुछ, तो हमको करना क्या है? हमें चाहिए तब तो हम करेंगे, हमको चाहिए ही नहीं। अच्छा नहीं करता तो कोई दोष है क्या? न अकृते न ही कश्चन, अगर कुछ नहीं करता है कर्तव्य कर्म में नुकसान भी नहीं है। पहले तो कर्तव्य कर्म ही नहीं है, क्यों नहीं है? हमको पाना नहीं है कुछ, हम लोग को क्या करना? करना है क्यों? मन को शुद्ध करना है। अब वो तो आत्मा का स्रोत पा चुका है, मन तो शुद्ध हो चुका है, उसके बाद तो ज्ञान उसको मिल गया। अब उसको मन नहीं शुद्ध करना है, मन शुद्ध की स्टेज चली गई उसकी। अब उसकी इच्छा है कर्तव्य कर्म करे या ना करे। आप नहीं कह सकते हो तपोवन महाराज को आप नहीं करते हो, क्यों नहीं करते हो? चलो या ठाकुर राम कृष्ण को नहीं कह सकते आपने ज्ञान यज्ञ एक भी नहीं किया जीवन में, चलो ज्ञान यज्ञ करो। बोले नहीं जाएंगे। तपोवन महाराज तो हमारे गुरुदेव को कहते हो क्यों जा रहे हो, यहीं पाड़ा में रहो, जिसको ज्ञान चाहिए यहां आएगा। बोले कर्तव्य कर्म नहीं है, नहीं करने से कोई असुविधा भी नहीं है। न च सर्वभूतेषु कश्चित् अर्थव्यपाश्रयः। बोलो किसी वस्तु के ऊपर निर्भर भी नहीं है, जा दिया तो दिया, नहीं मिला तो नहीं मिला, चलो ठीक है। मेरा सुख वस्तु के ऊपर में निर्भर नहीं है। हम लोग का सुख वस्तुओं पर निर्भर है, ये मिलेगा तो हम सुखी, नहीं मिलेगा तो हम दुखी। इसको और हम लोग डिटेल में देखेंगे। प्रश्न है अशोक जी, आत्म तृप्त संतुष्ट आत्मरति हुआ?
अशोक को रोज चाइनीज खाना दूंगी अपना।
अशोक जी कभी भी नहीं भूलेंगे इसको।
ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः, हरि ओम।